एक सेठ जी रास्ते से चले जा रहे थे, अचानक उन्होंने शोरगुल सुना, हल्ला गुल्ला हो रहा था, भीड़ जुड़ गई। तो वो भी भीड़ के पास पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक लड़का गाड़ी के नीचे कुचल गया है। दूर से ही सेठ जी ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारा ही बेटा, बस ऐसा विचार आते ही कि मेरा बेटा कुचल गया, वे तो वहीं पर बेहोश हो गए। अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई, भीड़ और उनके चारों तरफ जुट गई। उसमें उनका एक मित्र भी था, उसने देखा कि सेठ जी कैसे बेहोश हो गए। सेठ जी के पास पहुंच करके उसने वो जो जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसकी तरफ देखा तो उसे भी एक बार लगा कि अरे ये तो सेठ जी का लड़का ही होना चाहिए। पास जाके उन्होंने देखा तो वो सेठ जी का लड़का नहीं था। सारी बात उस मित्र के समझ में आ गई, उसने फौरन सेठ जी के लड़के को फोन किया, बुलाया, वो लड़का आ गया। तो सेठ जी को फिर पानी डाल करके और होश में लाया और मित्र ने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा आया हुआ है तुम्हें लेने के लिए, तुम यहां बेहोश हो गए थे। सेठ जी ने जैसे ही आंख उठा के देखा तो उसका बेटा सामने खड़ा था। सेठ जी बहुत खुश हुए और वो उठ करके चलने तैयार हो गए। उनका भ्रम टूट गया, उनको वास्तविकता मालूम पड़ गई। सचमुच अगर हम देखें तो हमें क्या चीज रुलाती है इस संसार में, क्या चीज हमें पीड़ा देती है इस संसार में? हमारा अपना भ्रम। अगर हमें वास्तविकता का बोध हो जाए तो इस संसार में फिर हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। अच्छा, एक मजे की कहानी सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, वो हर बात में कहते थे कि मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक बार जो है उन सेठ जी के घर में चोर घुस के आए, सेठानी जाग रही थी तो उसने सेठ जी को जगाया कि सुनो चोर घुस आए घर में। तो उसने कहा कि चुपचाप सो जाओ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। बड़ी मुश्किल। थोड़ी देर में जो है जब उन्होंने सामान वामान चुराना शुरू किया तो उसने फिर सेठ जी से कहा, अरे चोर तो सामान चुरा के ले जा रहे हैं। तो उसने कहा, अरे भली तुम भी जो है इतनी बुद्धू हो ना समझो, अरे जब चोर आए हैं तो सामान नहीं चुराएंगे? चुराएंगे, मैं तो जानता हूं, मुझे सब मालूम है। अब जब वो चुरा करके और सामान जाने लगे, फिर सेठ जानी ने जगाया सेठ जी को कि वो तो लेके ही चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नींद क्यों खराब करती है, तू चुपचाप सो जा। अब जब उन्होंने सामान बांध लिया होगा तो ले ही जाएंगे ना, ऐसे कैसे नहीं ले जाएंगे। और फिर सो गए। सबेरे से जब उठे और जब देखा कि सचमुच सारा सामान लूट गया है तो अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे मैं तो लूट गया। बड़ा मजा है अपन के साथ भी, हमारा अपन का ज्ञान भी ऐसे ही है। हम कहते हैं हम सब जानते हैं लेकिन अंत में हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जीवन भर कहते हैं कि हमें सब मालूम है लेकिन अपने जीवन को हम मालूम होने के बाद भी संभाल कहां पाते हैं। एक बार की बात है कि एक किसान जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे सिंह के कराहने की आवाज आई। तो उसने देखा कि गुफा के बाहर सिंह बैठा हुआ है और कराह रहा है। अब उसे डर भी लगा और दया भी आई और वो वापस जाने लगा भयवश। तो कहते हैं कि सिंह ने उसको आवाज दी कि वो उसको कांटा लग गया है, कोई निकाल देता तो अच्छा रहता। अब देखो कहानी में तो सिंह ने आवाज दी ऐसा कहना पड़ेगा, पर वहां जो भी घटना हुई वो बिल्कुल अलग है। तो किसान निर्भय होकर के सिंह के पास गया और उसने उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकाल दिया तो बड़ा उपकार माना उस सिंह ने किसान का और कहा कि जब तुम्हें मदद की आवश्यकता हो तो मेरे से
मदद मांग लेना, मैं तुम्हारी जो होगी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो कभी कभी जब लकड़ी का गट्ठा ज्यादा हो जाता तो सिंह अपने पीठ पर रखकर और थोड़ी दूर उसे छोड़ देता, और जब गांव की सीमा आ जाती तो लकड़ी का गट्ठा किसान अपने सिर पे रख करके घर ले आता था और सिंह वापस चले जाता था। इस तरह जो है वो कई दिन तक ऐसा क्रम चलता रहा। एक बार किसान की बेटी की शादी होना थी तो उसके पास तो पैसे थे नहीं। उसने कहा अब क्या करें, बड़ा दुखी था। लकड़ी काटने गया जंगल में तो उसको दुखी देख करके सिंह ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और पैसा तो है नहीं। तो सिंह ने कहा आओ हम तुम्हें बताते हैं। तो वो एक स्थान पर ले गया, वहां पर बहुत सारे सोने के आभूषण पड़े हुए थे गुफा के अंदर। बहुत खुश हुआ किसान और उसने सारे आभूषण वहां से इकट्ठे कर लिए और उसने सिंह से कहा कि जब हमारे बेटी की शादी होगी तो आप उसमें आइएगा। और उसने दिन बता दिया, तिथि बता दी कि इस दिन आना है। तो सिंह ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे मित्र हैं तो जरूर आएंगे। तो सिंह जो है शादी के दिन घर पर उसके पहुंच गया। पहुंच गया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो सिंह है, और सिंह आ गया, सब डर भयभीत होने लगे। तो किसान की जो जीवन साथी थी उसने मालूम क्या कहा घर के अंदर से, अरे वो तो गधा है, गधा हमारा बोझा ढोता है, वो शेर थोड़ी है। बस शेर ने जो है ये बात सुनी और उल्टे पांव जंगल वापस लौट गया। किसान को जब मालूम पड़ा कि सिंह तो आया था और पता नहीं क्यों वापस चला गया, तो जब शादी हो गई तो दूसरे तीसरे दिन वो जंगल गया। वहां जाकर के उसने आवाज दी तो सिंह आ गया। किसान कुल्हाड़ी लिए था तो सिंह ने कहा कि तुम मेरे सिर पर इस कुल्हाड़ी से वार करो। तो उस किसान ने कहा कि अरे तुम हमारे मित्र हो और हम तो तुमसे पूछने आए थे कि तुम शादी में बीच में कैसे चले गए, और अब तुम कह रहे हो कि मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से वार करो। तो सिंह ने कहा हाँ, अगर वो सब जवाब मैं बाद में दूंगा, पर तुम पहले मेरे ऊपर सिर पर कुल्हाड़ी से वार करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो डर के मारे सिंह ने और आंख बंद करके और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। खून नहीं निकलने लगा, लहू लुहान हो गया। सिंह वापस अपनी गुफा में चला गया। किसान दुखी मन से वापस लौट गया। महीने भर इस बात को बीत गया। महीने दो महीने के बाद किसान फिर डरते डरते एक दिन जंगल में गया तो उसने देखा सिंह वहीं बैठा हुआ था। सिंह ने बुलाया पास में और कहा कि तुम पूछते थे कि क्यों लौट आए थे और फिर मैंने क्यों तुमसे ये कुल्हाड़ी मारने को कहा, तो सुनो देखो जरा सिर पर क्या कुल्हाड़ी का घाव अभी बाकी है? तो उसने कहा नहीं, कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया। तो सिंह ने कहा कि कुल्हाड़ी का किया हुआ घाव तो भर गया, लेकिन तुम्हारी जीवन साथी ने जो मुझे गधा कहा था वो घाव मेरे मन में अभी भी बना हुआ है। वचन हम ऐसे बोलें जिससे कि दूसरे के मर्म में पीड़ा ना हो, दूसरे के मर्म को भेदन करने वाली वाणी जो है वो सत्य नहीं कहलाती है। इसलिए ऐसा सत्य वचन जो कि प्रिय हो वही बोलना चाहिए। वाणी घाव भी पहुंचाती है और वाणी शीतलता भी देती है। हमें घाव पहुंचाने वाली वाणी नहीं, शीतलता देने वाली वाणी बोलना चाहिए। यही तो इस कहानी का अर्थ निकला है ना। अब देखो दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक राहगीर जो है वो चले जा रहा था शहर की तरफ गांव से, तो बहुत देर हो गई उसको चलते चलते। तो उसने गांव खेत में काम करने वाले एक किसान से पूछा कि क्यों भाई उस गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो किसान कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर जब यात्री चला तो किसान ने जोर से आवाज दी, 2 घंटे लगेंगे अगर ऐसे ही जाओगे तो, और अगर जरा जल्दी जल्दी जाओगे तो फिर तो शाम तक नहीं पहुंच पाओगे। बड़ा चकित हुआ वो यात्री और हंसा भी, पर उसने कहा कि ये कैसा किसान है और इतनी देर के बाद तो पूछने पर बताया और कैसी उल्टी बात बता रहा है कि अगर ऐसे ही धीरे धीरे जाओगे तो 2 घंटे पहुंच जाओगे और अगर जरा जल्दी जल्दी चलोगे तो शाम तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा सोचते सोचते वो, और उसने कहा कि अपने को तो जल्दी जल्दी चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। और बस जैसे वो तेज चाल में चला तो गिर पड़ा, गिर पड़ा तो बहुत चोट लग गई, अब तो चलना भी मुश्किल हो गया, अब तो जो है चल ही नहीं जा रहा है, वहीं बैठ गया। थोड़ी देर हो गई, शाम होने को हुई, तो किसान वापिस गांव लौट रहा था, तो रास्ते में उस व्यक्ति को बैठे देखकर उसने कहा कि देखो आप जरूर जल्दी जल्दी चले होंगे इसलिए आपको शाम हो गई। तो उसने कहा हाँ आपकी बात तो बहुत सही निकली, लेकिन हमको अभी तक आपकी सारी बात समझ में नहीं आई। एक तो हमने जब पूछा तो आपने कुछ नहीं कहा, बाद में कहा जब हम थोड़ी दूर निकल गए, और फिर आपने कहा कि जल्दी चलेंगे तो शाम हो जाएगी, अब थोड़ा तो मुझे समझ में आ रहा है। तो किसान ने कहा हाँ देखो जब तक मैंने तुम्हारी चाल नहीं देखी थी तब तक मैं कैसे कह देता कि तुम कितनी देर में पहुंचोगे, मैंने तुम्हारी चाल देख के कहा कि अगर इसी चाल से चलोगे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, और अगर जल्दी चलोगे तो ये तो रास्ता पत्थरों का है, कहीं भी संभव है कि गिर जाओ। तो भैया इससे क्या आपने को शिक्षा मिली कि मंजिल पाने के लिए पहली बात कि चलोगे तो ही पहुंचोगे, बिना चले कोई पूछे कि मैं वहां कितनी देर में पहुंच जाऊंगा तो कैसे कह सकते हैं, जब आप चलोगे तो पहुंचोगे, और दूसरी बात चाल से मालूम पड़ेगा कि कब तक पहुंचोगे, और तीसरी बात अगर असावधानी करोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति को ऐसे ही अच्छे रास्ते पर चलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मैं चल करके ही अपनी मंजिल पा पाऊंगा, और मेरी चाल अगर ठीक होगी तो ही मैं ठीक मंजिल को पा पाऊंगा, और मैं अगर सावधानी पूर्वक चलूंगा तो ही मंजिल पा पाऊंगा। राजा के दरबार में एक सेवक था, उसने सोचा कि उसका बेटा भी दरबार में जगह पा जाए, तो उसने खूब पढ़ाया, फिर वो राजा के पास उसको ले गया कि ये मेरा बेटा है और बहुत पढ़ा लिखा है, आप इसको अपने दरबार में सेवा का अवसर दीजिएगा। तो राजा ने सिर उठा के भी नहीं देखा और कहा कि जाओ साल भर और पढ़ो। अब जैसे तैसे करके एक साल और बीत गया, उसने और पढ़ाई करी। अब की बार जब वो लेकर के आया कि आपके कहने से एक साल और पढ़ लिया है, तो राजा ने थोड़ा सिर उठा के कहा कि एक साल और पढ़ो। वो जो सेवक था वो तो बड़ा हैरान हुआ और उसने निवेदन किया कि राजा साहब अब तो मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं और पढ़ाऊं इसके लिए, आप कुछ तो कृपा करिएगा। तो राजा बोला कि अब पढ़ाना नहीं है, किसी साधु के चरणों में इसको साल भर के लिए भेज दो, वहां रहेगा, फिर उसके बाद में विचार करूंगा। ठीक है, गुरु के चरणों में भेज दिया उस लड़के को, वो वहीं पर रहने लगा। जब साल भर पूरी होने को हुई तो पिता उसको लेने के लिए पहुंचा और उसने कहा कि चलो बेटे साल भर पूरी हो गई और तुम्हें राजा के यहाँ दरबार में और चलना है। तो बेटे ने तो जो है पिता को लगभग पहचानने से इनकार ही सा कर दिया, और जैसे तैसे जो है और पहचाना भी तो यही कहा कि अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। पिता बहुत घबराया और जाकर के राजा से कहा कि अरे आपने तो जो है मुझे मुश्किल में डाल दिया, आपने अपने दरबार में भी उसको नहीं रखा, और वो तो गुरु के पास से अब आने तक को तैयार नहीं, मेरे यहाँ से तो मेरा बेटा भी चला गया। वो व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया राजा के पास में। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, उसने आने से इनकार कर दिया, तब तो फिर उसे लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि राजा जो है उस साधु के पास गए और उन्होंने कहा कि इस लड़के को मुझे दे दीजिएगा, ये मेरे दरबार की शोभा बढ़ाएगा। तो गुरु ने कहा कि उसी से पूछ लो कि वो दरबार में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। तो राजा ने उससे कहा कि चलें, चलो बेटे अब मेरे दरबार की तुमसे शोभा बढ़ेगी, और तुमने यहाँ पर वास्तव में गुरु के समीप रह करके और बहुत कुछ सीख लिया है। तो उस बेटे ने कहा कि अब मुझे सच्चा दरबार मिल गया है, अब मुझे आपके दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसी कहानी है, कितना अच्छा संदेश मिलता है कि जब तक हम जिन चीज़ों को के प्रति ज़्यादा आसक्त हैं वे चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, जब हम उन्हीं चीज़ों के प्रति अनाशक्त हो जाते हैं, तो हमारे चरणों में वे सारी चीजें, संसार के भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आकर के और हमें प्राप्त होने लगते हैं गुरुओं के समीप रह करके। दूसरी बात, हमें यही सीखना चाहिए कि हम संसार की भौतिकताओं से विमुख हो जाएंगे और अपने वास्तव में हमारा सच्चा दरबार कौन सा है, वो तो हमारे अपने आत्म शांति और आत्म संतोष ही सच्चा दरबार है। वो जिसने प्राप्त कर लिया तो उसे संसार की सब संपदा प्राप्त हो गई, है ना। मार्क ट्वेन हुए हैं, कोई विदेशी हैं, तो उन्होंने लिखा अपना एक संस्मरण, वो आपको सुनाता हूं, कि वो दान का प्रवचन सुन रहे थे, उनका मन जो है दान देने के लिए हो गया और बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि $50 तो मैं डोनेशन दे ही दूंगा। वो लिखते हैं अपने संस्मरण में कि जैसे ही मेरे मन में आया कि मैं $50 दे दूंगा, फिर जो है मेरा मन उस $50 में ही उलझ गया, फिर मैंने वो दान का प्रवचन सुना अनसुना जैसा ही हो गया। मैं सोचते रहा कि $50 तो पचास तो बहुत होते हैं, मैं $25 तो दे ही दूंगा। वो कहते हैं कि फिर थोड़ी देर मैं बैठा रहा वहां पर, प्रवचन तो नहीं सुना और $25 भी बहुत होते हैं, ऐसा मन में विचार आया तो मैंने कहा कि मैं $10 तो दे ही दूंगा। और यहां तक स्थिति बनी कि मैंने कहा कि अब कुछ नहीं तो $1 तो मैं दे ही दूंगा। और फिर मुझे अंत में उस स्थान से और वापिस लौटना पड़ा, मुझे अपने मन में बहुत ग्लानि हुई। उसने अंत में लिखा अपने संस्मरण में कि मैं इसलिए वहां से उठ के आ गया क्योंकि मेरे मन में थोड़ी देर पहले जो $50 दान देने का था उसके विपरीत भाव आ गया था कि जब वो अपनी झोली लेकर मेरे पास मांगने आएगा तब उसमें जो है मैं कमती पैसे डालकर ज्यादा पैसे निकाल लूंगा, ऐसा मेरे मन में भाव आ गया था। देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि जो श्रेष्ठ कार्य है उसे कल पर मत डालो, उसे तुरंत कर लो। अच्छे विचार हमारे मन में बहुत थोड़ी देर को आते हैं, बुरे विचार तो हमेशा बने रहते हैं, इसलिए हमें जो शुभस्य शीघ्रम, जिसको कहते हैं कि शुभ कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही उसे संपन्न कर लेना चाहिए, भाव बदलने में देर नहीं लगती। एक युवक था, उसको गुरु की खोज थी, वो गुरु की खोज में निकला और उसको गुरु मिल भी गया। उसने गुरु से खूब सीखा, खूब ज्ञान हासिल किया, गुरु जो भी पढ़ाते उसे उसने कंठस्थ कर लिया। पर वो ये बात भूल गया कि गुरु जो कहते हैं उसे सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जो गुरु है वैसा बनने का प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है। जहां से गुरु उन अनुभव की बातों को सुनाते हैं उस अनुभव की ऊंचाई को छूना आवश्यक है। हम उन बातों को ही रट लेते हैं और स्मरण में रख के अपने आप को बहुत ज्ञानी मान लेते हैं। ऐसा ही उस युवक के साथ में हुआ। एक दिन युवक कोई विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर रहा था, गुरु जी वहीं बैठे थे। ऐसे कई विद्वानों से वो शास्त्रार्थ करके उन्हें निरुत्तर कर चुका था। आज भी ऐसा ही हुआ, वो विद्वान निरुत्तर हो गया। तो गुरु शांत भाव से सब देख रहे थे। युवक के मन में आया कि गुरु मुझे शाबाशी देते, मैंने आज शास्त्रार्थ में फिर इस विद्वान को जीत लिया है। पर गुरु ने शाबाशी देने के स्थान पर उस युवक से कहा कि इस तरह कब तक तुम अपना समय व्यर्थ गमाओगे, अपने को कब जीतोगे। बस वो युवक सुनकर के अवाक रह गया। उसके बाद बहुत गहराई में उतर गई कि मैं सबको शास्त्रार्थ में तो जीत लेता हूं, लेकिन मैंने अपने मन को, अपनी इच्छाओं को कहां आज तक जीत पाया है, अपने अहंकार को मैंने कहां जीत पाया है। और कहते हैं कि वो युवक उस दिन के बाद से और चुप हो गया और उसने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। लोग उसे ना समझ समझने लगे कि ये तो कुछ जानते ही नहीं, इसलिए तो कुछ बोलता नहीं है, पर वो बिना बोले भी बहुत खुश रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था। प्रकृति के बीच उसकी आंखों में जो भी झांक कर देखता था तो बहुत आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता था। गुरु भी जो है उसे बहुत आशीर्वाद देते थे। मैं इस कहानी को पढ़ करके यही सोचता हूँ कि सचमुच हमें जो बातें हमारे गुरुजन कहते हैं उन बातों को तो महत्व देना ही चाहिए, पर वे किस अनुभव से गुजर करके और किस ऊंचाई पर पहुंच करके उन बातों को कहते हैं, हमें भी उस अनुभव और उस ऊंचाई को छूने का प्रयास करना चाहिए। ये इस कहानी से अपन को शिक्षा मिलती है, हैं? एक बहुत पुरानी घटना है। एक राजा जो है वो युद्ध करने दूसरे राजा से और उसके राज्य में गया और जीत भी गया। जीत करके उसने हारे हुए राजा का जो राज्य था वो अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ की प्रजा से कहा कि जाओ तुम इस राज्य को अब खाली कर दो, क्योंकि हमने जीत लिया है। और सुनो, जो जितना ले जा सके, सामान, हीरे जवाहरात, संपत्ति, वो सब जितना ले जाना चाहे, जिससे अपना जितना बने, सिर पर रख करके जितना ले जा सके ले जाओ। सबने अपना सामान उठाया, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा जो है बोझ सिर पर रख लिया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जिसके पास जो साथ सब उठा लिया। सब चल रहे थे लेकिन चलते हुए भी सब दुखी थे। देखो, एक तो उनके ऊपर जो सामान का बोझ है उसका दुख, और दूसरा सबसे बड़ा दुख, जो सामान साथ में आ गया है उसकी खुशी नहीं है, जो सामान नहीं ला पाए हैं वे उस बात के लिए वे दुखी हैं। जो सामान साथ में लेके आए हैं वो सुख नहीं दे रहा है, वो बोझ बना हुआ सिर पर लदा हुआ है, और जो घरों में छूट गया है, ला नहीं पाए हैं, उसकी पीड़ा अलग है। दूसरे गांव के लोगों ने पूछा कि इतना सामान, इसके बाद भी रोने की वजह क्या है? तो वो जो लोग दूसरे राज्य से खाली करके आ रहे थे उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगे, जो छूट गया है, जिसे छोड़कर हमें आने पड़ा है, जो हम ला नहीं पाए हैं, वो इतना अधिक है, उसके लिए हम रो रहे हैं। जो ले आए हैं उसके बोझ से भी दबे हैं, और जो नहीं ला पाए हैं उसके लिए रो रहे हैं। वहां के लोग बड़े चकित हुए और उन्होंने लेकिन उस पूरी भीड़ में देखा कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर कोई भी सामान नहीं है, जरा भी बोझ नहीं है, वो बहुत खुश और चला जा रहा है। लोगों ने सोचा कि शायद बहुत गरीब आदमी होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, इसलिए तो लेके नहीं आया। तो उससे पूछा कि क्यों, तुम्हारे पास क्या कोई संपदा नहीं थी जो तुम लेके नहीं आए? उसने कहा कि मेरे पास जो था वो तो अभी भी मेरे पास है, मेरी पूंजी, मेरी निजी संपदा, वो तो मेरे पास है, और आप देख रहे हैं मैं इसीलिए तो खुश हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं लूटा, मेरा तो कुछ भी नहीं छीना गया, मेरा तो सब मेरे पास है। जिसे खोने का दुख हो, जिसे साथ में रखें तो भी पीड़ा हो, वो निजी संपदा कैसे हो सकती है? निजी संपदा तो वही है जो कि कभी नहीं छीनती, जिसके खोने का भय नहीं रखता रहता, और जो हमें निरंतर आनंद और प्रसन्नता देती है। वास्तव में वो आत्म संपदा ही हमारी संपदा है। ये भौतिक संपदा तो बोझ की तरह हम उसको ढोते रहते हैं, उसके छिन जाने पर दुखी होते हैं, उसकी प्राप्ति में भी हमें अभाव का दुख ही खटकता है, सद्भाव का सुख हम कहाँ ले पाते हैं। ऐसा इस कहानी से अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। एक आदमी बहुत बहुत दुखी था। वो रोज प्रार्थना करता था कि भगवान, आखिर बात क्या है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? असल में सच्ची बात तो यह है कि यहां हर आदमी को लगता है कि जैसे सारी दुनिया सुखी है और मैं ही दुखी हूं। तो वो भी भगवान के सामने अपना रोना रोता था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं। तो एक रात उसको सपना आया और उसने सपने में देखा कि जैसे भगवान कह रहे हों कि उठाओ अपने दुख की गठरी और हम उसको बदले देते हैं, तुम्हें वो दुख ज्यादा मालूम पड़ते हैं तो दूसरे तुम्हें ज्यादा सुखी मालूम पड़ते हैं, उनके दुख का मालूम पड़ते हैं तो उनसे तुम बदल लेना, कल का दिन अपनी अपनी दुख की गठरी बांधो और एक स्थान बता दिया कि वहां पर आ जाओ, हम बदल देंगे। बड़ा खुश हुआ वो और चला वो लेकर के अपने दुखों की गठरी भर करके। लेकिन मजा ये है कि हम अपने दुखों को दूसरे के सामने बड़ा कर करके बताना चाहते हैं, तो सब की गठरी, उसने भी जितने दुख नहीं थे वो उन दुखों की भी गठरी बना ली, और सब लोगों की देखा उसने तो सबकी गठरी बहुत बहुत बड़ी थी। अब जो है वो पहुंचे उस स्थान पर जहां बताया गया था, आकाशवाणी हुई कि सब लोग अपनी अपनी गठरी इस हॉल में जो खूंटे लगे हैं उन पर टांग देवें। तो सबने अपनी अपनी गठरी टांग दी, और फिर उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि बस जो जिसकी गठरी उठाना चाहे वो उसकी गठरी उठा ले, सबके लिए खुली छूट है। आपाधापी मच गई, भागदौड़ मच गई, सब भागे भागे पहुंचे, और अंत में देखा तो किसी ने किसी की गठरी नहीं उठाई थी, सबने अपने अपने ही दुखों की गठरी फिर से वहां से उठा ली। क्या सोच रहे थे उस समय, लोगों ने पूछा कि अरे आपने अपने अपने ही दुखों की गठरी फिर उठा ली, आप तो कह रहे थे कि मुझे अपने दुख भोगे नहीं जाते हैं, दूसरे के तो दूसरे ज्यादा सुखी हैं, हम ज्यादा दुखी हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब मुझे वास्तविकता मालूम पड़ गई, दूसरे के दुख भी मेरे से शायद अधिक ही हैं, और कम से कम अपने दुखों से मैं परिचित तो हूं, उनको मैं किसी भी तरह से और भोग लूंगा, पता नहीं दूसरे के दुख किस प्रकार के हैं, इसलिए हमने तो गठरी नहीं बदली है। जिंदगी में जिन दुखों को हमने भोगा है, अनुभव किया है, उनसे तो हम निपट लेंगे। हमारा भ्रम टूट गया, सब एक दूसरे की खुशी देखते हैं और अपना दुख देखते हैं। अगर हमें जो प्राप्त हुआ है उसको लेकर हम खुश हों, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए दुखी ना हों, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए सच्चा पुरुषार्थ करें, तो इस संसार में हम जहां कहीं भी रह करके और सुख शांति पा सकते हैं। आत्मसंतोष जो है वो शांति देता है, और अपने दुखों को सह करके ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के सुखों से हम ईर्ष्या ना करें तो भी हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। मैं तो सोचता हूं इस कहानी से अपन को ऐसी शिक्षा ले लेनी चाहिए। एक आदमी था, वो रोज जो है घर के सामने बैठ जाता और गांव के बाहर जंगल में जाती हुई गायों को गिनता रहता था। इतनी गायें गईं, फिर शाम को गायें जंगल से वापस लौटती थी तो फिर गिनता था कि इतनी गायें गई थीं और इतनी गायें वापस आ गईं। रोज हिसाब किताब मिलाता रहता था। उसे लगता था जैसे कि सब गायें मेरी हैं। अपन को भी तो संसार में ऐसे ही लगता है ना, पर जो चीज हमारी नहीं है उसको भी हम अपना मान बैठते हैं। एक दिन क्या हुआ कि चार गायें वापस नहीं लौटी। वो बड़ा परेशान, भागा दौड़ा घर में, कैलकुलेशन मिलाता रहा कि इतनी गई थी और इतनी लौटना चाहिए, हिसाब किताब में तो जो है कहीं भी कमजोरी नहीं है। पिता रोज ऐसा करते हुए उस अपने बेटे को देखते थे और बहुत दुखी होते थे। उस दिन जब वो लड़का बहुत मुश्किल में पड़ा था कि हिसाब ही नहीं मिल रहा है, चार गायें नहीं लौटी हैं, तो पिता ने उससे कहा कि सुनो, गाय वो तुम्हारी है जो तुम्हें दूध दे, ये गायें सब तो पराई हैं, दुनिया भर का हिसाब कहां तक तुम अपने पास रखोगे, अपने जीवन में जो निजी जीवन का हिसाब है, अपने कर्मों का हिसाब है, उतना ही अगर पूरा कर लो तो ही ठीक है, तो जीवन में आनंद मिलेगा। उस बच्चे को, बेटे को समझ में बात आ गई। हम लोगों को पता नहीं कब बात समझ में आएगी, हम लोग तो दूसरे के ही हिसाब किताब में लगे रहते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ बिता देते हैं। अपने स्वयं के कल्याण के लिए अपन कुछ सोचते ही नहीं है, पर सोचना चाहिए, है ना। ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर, ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर, ये मूर्तियां अनुपम सुंदर इसलिए कि हम पा सकें कोई रूप अपने में अनुत्तर, पा सकें कोई रूप अपने में अनुत्तर, और श्रद्धा से झुककर गलाते जाएं अपना मान मद परत दर परत निरंतर, ताकि कम होता जाए हमारे
और प्रभु के बीच का अंतर, ताकि कम होता जाए हमारे और प्रभु के बीच का अंतर। ये दीप धूप ये गंध मानो कह रही है हमारा ही है ये आत्म सौरव अगंध। ये दीप धूप ये गंध मानो कह रही है हमारा ही है ये आत्म सौरव अगंध। ये गीत गान वंदना के छंद मानो कह रहे हैं हमारा ही है ये आत्मगान अमंद। ये प्रतिमा अपलक निष्पंद मानो कह रही है हमारा ही है ये आत्मदर्शन अनंत। रोज हम इनके करीब आएं और इन्हें अपने में पाएं, पुलक उठें मन प्राण ये दीप धूप ये गंध। ये आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कविता है। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वो देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वो देवता, जिसका मिलन इस आत्मा में विराग का कोई अनोखा गीत बन बजता रहा वो देवता। मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश नव देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो समय की तूलिका से मेरे समय पर निज समय लिखता रहा वो देवता, जो समय की तूलिका से मेरे समय पर निज समय लिखता रहा वो देवता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता। मैं जागता हूं या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता, जो गति मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता। उसने एक पेड़ लिखा, खिड़की से बाहर झांका देखा, कोई और उससे भी पहले कई कई पेड़ लिख गया। उसने एक पेड़ लिखा, खिड़की से बाहर झांका देखा, कोई और उससे भी पहले कई कई पेड़ लिख गया। उसने सोचा वो अब पहाड़ लिखेगा, देखा सहसा कोई और सामने एक पहाड़ लिख गया। उसने डरते डरते चुपके से एक नदी लिखी, कोई और लिख गया, अब वो नहीं लिखता, कहता है कोई और है और सिर्फ वही है जो लिखता है, कोई और है और सिर्फ वही है जो लिखता है। वेशभूषा जिसने रख दी उतार, अस्त्र आयुध से हुआ जो पार, देखकर लगा उसे दिगंबर हो जाना, अपने आप में है अपना श्रृंगार। वेशभूषा जिसने रख दी उतार, अस्त्र आयुध से जो हुआ पार, देखकर लगा उसे दिगंबर हो जाना, अपने आप में है अपना श्रृंगार। सर्व मैत्री सर्व प्रेम और अब प्रतिकार, लहराता है प्रतिक्षण जिसमें करुणा का पारा बार, प्रणाम उसे मेरे बारंबार। बांसुरी के स्वर जाने किसे बुलाते हैं, बेफूल हवाओं में अपनी सुगंध जाने किसे भेजते हैं। सूरज की किरणें रोज सवेरे जाने किस द्वार पर दस्तक देती हैं, वृक्ष की ये छाया जाने किसके आने का इंतजार करती है। काश सब अपने को पा लेते, बांसुरी के स्वर जाने किसे बुलाते हैं। सांझ के किनारे खड़े होकर मैंने पहाड़ से उतरती रात को देखा, और सोच में डूब गया कि अंधेरा कितने जल्दी उतर आया। सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ चढ़ना होगा, सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ चढ़ना होगा। जब भी मैंने किसी और को निशाना बनाया और अपने जीतने का जश्न मनाया, मैंने पाया मैं ही हारा, अनजाने ही मेरा तीर मानो मुझसे टकराया, शिकार मैं ही बना और कई रोज तक कराहती रही मेरी घायल चेतना जब भी मैंने किसी और को निशाना बनाया। प्यासा मृग मरीचिका में उलझा और तड़प उठा, हमने कहा बेचारा मृग। स्वाद की मारी मीन कांटे में उलझी और मर गई, हमने कहा अभागी मीन। एक पतिंगा दीपक की जोत पर रीझा और झुलस गया, हमने कहा पागल परवाना। बाहरे हम अपनी प्यास, अपनी उलझन और अपने दीवानेपन पर हमें अपने से कभी भी कुछ भी नहीं कहना। प्यासा मृग मारीचिका में उलझा और तड़प गया, हमने कहा बेचारा मृग। हमने यहां एक एक चीज और अपने बीच वासनाओं के नित नवीन रंगीन पर्दे डाल रखे हैं। कि रोज कुछ नया लगे, जिंदगी भ्रम में गुजर सके और बासेपन का एहसास हमें विरक्त न कर सके। हमने यहां एक एक चीज और अपने बीच डाले हैं कई पर्दे। जिंदगी में हमारे चाहे अनचाहे बहुत कुछ हो जाता है। हमारा मन चाहा हुआ तो लगता है हमने किया है, हमारा अनचाहा हुआ तो लगता है शिकायत करें, पूछें कि ये किसने किया। जीवन भर इसी दोहरे गणित में हम जीते हैं और समझ नहीं पाते कि अच्छा बुरा चाहा अनचाहा अपने लिए सब हम ही करते हैं। अपनी मौत की इबारत अपने हाथों हम ही लिखते हैं, अपने को पूरा गलाकर माटी भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले की आंख अभी भी खोजती है कि उसमें कहां क्या कमी रह गई। माटी अपने को पूरा गला कर भगवान बन गई। रात आती है, सारा आकाश तारों से भर जाता है। दिन होते ही मानो सब झर जाता है। इसमें सोचो तो सोचते ही रहो, हाथ क्या आता है। जो समझते हैं वे समझते हैं कि उगते डूबते सितारे हैं, आकाश अकेला था, अकेला ही रह जाता है। रात आती है, सारा आकाश तारों से भर जाता है। वो रोज की तरह आज भी अपने कमरे का द्वार खोलेगा, सीढ़ियां चढ़ेगा। थका हारा वो बेचारा कल के इंतजार में आज फिर सोएगा। कल कोई और द्वार खोलेगा, वो रोज की तरह आज भी अपने कमरे का द्वार खोलेगा। कामनाओं का कलश ऊपर से सोने सा दमकता है, शुराख उसमें कहीं नीचे पैंदी में होता है। कोई उसे कितना भी भरे वो सदा अतृप्त रहता है। माना कि हम में भगवान बनने की योग्यता है, पर इस बात पर हम इतना अकड़ते क्यों हैं? वो तो किसी चीटी में भी है, सवाल सिर्फ योग्यता का नहीं, हूबहु होने का है। स्वयं को भगवान मानने मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का है। सवाल सिर्फ योग्यता का नहीं, हूबहू होने का है, स्वयं को भगवान मानने मनवाने का नहीं, स्वयं भगवान बन जाने का है। हम अपने को जरा ऊंचा उठाएं, हम अपने को जरा ऊंचा उठाएं इस बार ना सही भगवान, एक बेहतर इंसान तो बन जाएं, माना कि हमें भगवान बनने की योग्यता है। उसने सोचा जब वो पहली बार नीड से बाहर पैर रखेगा तब कोई आकर उससे थाम लेगा। उसने सोचा जब कोई पहली बार नीड से बाहर पैर रखेगा तब कोई आकर उसे थाम लेगा, आंचल से लगाकर दुलार लेगा, पंख सहलाकर उसे उड़ने का साहस देखा, दो चार कदम उसके साथ चलेगा। पर हुआ ये कि उसने न पैर बाहर रखा, न पंख खोले, न उड़ा। वो सोचते ही रहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। उसने सोचा जब वो पहली बार नीड से बाहर पैर रखेगा। कभी कहीं कोई घटना होती है तो लोगों को बहुत कुछ कहने सुनने की गुंजाइश मिलती है। कभी कहीं कोई घटना होती है तो लोगों को बहुत कुछ कहने सुनने की गुंजाइश मिलती है। हम लोग तो चाहते ये हैं कि जरा पर्दा हटे और हम सब देख लें, कि जरा पर्दा हटे और हम सब देख लें, कि जरा कोई छिद्र हो और हम झांक लें। घटना क्या हुई इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, घटना क्या हुई इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम जो चाहेंगे वही देखेंगे, जो हुआ वो नहीं देखेंगे। हम जो चाहेंगे वही देखेंगे, जो हुआ वो नहीं देखेंगे। भीड़ में कोई हमें सजग और संवेदनशील कहे, हम इतना ही चाहेंगे। कभी कहीं कोई घटना होती है तो लोगों को बहुत कुछ कहने की गुंजाइश मिलती है। कभी कहीं कोई घटना होती है, हम यहां दो चार कदम चले और ठहर गए। सोचने लगे कि जब सब आपो आप समय आने पर होगा तो हमें क्यों व्यर्थ चलना है। हम यहां दो चार कदम चले और ठहर गए। सोचने लगे कि जब सब अपने आप समय आने पर होगा तो हमें क्यों व्यर्थ चलना है, और यदि चले भी तो पहुंचेंगे, इसका क्या भरोसा, चलो यहीं ठहर जाते हैं, आखिर कहीं ना कहीं पहुंचकर ठहरना ही तो है। तब से हम यहीं ठहरे हैं और हंसते भी हैं कि चलने वाले कितने नासमझ हैं। हम यहां दो चार कदम चले और ठहर गए। सबको छोड़कर जब मैं अपने को खोजने निकला, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा। सबको छोड़कर जब मैं अपने को खोजने निकला, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा। मेरा रास्ते पर निश्चल निरावरित चलना लोगों को पागलपन लगा। मेरे सर्व प्रेम सर्व मैत्री को लोगों ने वासना और अहंकार कहा। मेरे सर्व प्रेम सर्व मैत्री को लोगों ने वासना और अहंकार कहा। मेरी सरलता और कोमलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मजाक बनाया। मेरी सरलता और कोमलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मजाक बनाया। मैं चुप रहा और चुपचाप चलता रहा। चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा। चलते चलते अपने में खो गया नहीं रहा। तब से लोगों ने मुझे देवता कहा। अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता हूं और मुस्कुराता हूं। ये सोचकर कि जीते जी मुझ आदमी में जो देवत्व किसी ने नहीं देखा, उसे आज मेरी प्रतिमा में कैसे देख लिया। ये मैं एक नदी हूं कि निरंतर बहती ही रहती हूं। अपने किनारे आए लोगों से पूछती हूं, कितना क्यों सोचते हो, ज्यादा मत सोचो, समर्पित हो, अपने में डूबो और बहो। मैं अपने में मगन, देखो तो बहती ही रहती हूं। ये मैं एक नदी हूं कि निरंतर बहती ही रहती हूं। लोगों का कभी कभी मुझ में पैर डुबोना, मुझे रोकना, हल्की थाप देकर कोई स्वर खोजना, मुझे लय में बांधना, सब व्यर्थ है। मैं तो जन्म जन्म की निर्बंध, सबको निर्बंध करने आई हूं। ये मैं एक नदी हूं कि निरंतर बहती ही रहती हूं। किसी नौका पर होकर सवार, रोज रोज इस पार से उस पार, तुम मेरी प्राणधारा को चीरकर कहां जाते हो। वहां देखो उस पार मैं ही तो हूं। आओ मेरे साथ, मैं सागर की हूं, सागर की ओर बहती हूं। ये मैं एक नदी हूं कि निरंतर बहती ही रहती हूं, कि मैं एक नदी हूं कि निरंतर बहती ही रहती हूं। यहां आदमी पहले पहल अपने मन का एक घर बनाता है, जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है। यहां आदमी पहले अपने मन का एक घर बनाता है, जो बनते वक्त बहुत बड़ा बनता है पर रहते रहते बहुत छोटा लगने लगता है, फिर मजबूरन उसे एक घर और बनाना पड़ता है, आदमी वही रहता है, घर बदल जाता है, संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी करते हैं, फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं, पर जिंदगी भर करीब रहकर भी हम खुलकर कहां मिल पाते हैं। संबंधों के बीच पहले एक दीवार हम खुद खड़ी कर लेते हैं। एक उड़ते पखेरू ने मुझसे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, और एक नदी मुझसे निरंतर बहते रहने को कह गई। एक उड़ते पखेरू ने मुझसे निरंतर उड़ते रहने को कहा, एक पेड़ ने तूफानों के बीच अडिग खड़े रहने को कहा, और एक नदी मुझसे निरंतर बहते रहने को कह गई। सूरज ने सुबह आकर मुझसे दिन भर रोशनी देते रहने को कहा, चांद सितारों ने रात भर अंधेरे से जूझने को कहा, और एक नीली झील मुझे बाहर बेहद भीतर एक सार निर्मल होने को कह गई, सागर ने धीरे से लहरा के कहा, सीमाओं में रहो। आकाश ने अपने में सबको समाकर कहा, असीम हो। और एक नन्ही बदली प्रेम से भरकर मुझसे निरंतर बरसने को कह गई, मेरी जिंदगी इस तरह सबकी हो गई, उनके बीच का अकेला भला आदमी गांव से चला गया, जहां गया वहीं रम गया, वे अब महसूस करते हैं कि गांव में पहले रोशनी थी अब अंधेरा हो गया, मैंने कई पर्वत लांघे, नदियां पार की, कई रास्ते चलकर तय किए, आकाश की ऊंचाई सागर की गहराई नापी, दुनिया को देखा लोगों को परखा, पर फिर भी लगता है कुछ अनछुआ अनदेखा है, कुछ अलंग अनलेखा है, और शायद वो मैं ही हूं। वैसे मैंने पर्वत लांघे, नदियां पार की, कई रास्ते चलकर तय किए। मैं धारा के बीच तटस्थ हूं, इसमें शब्द थोड़े से हैं पर देखिएगा, मैं धारा के बीच तटस्थ हूं मानो किनारे पर बैठा हूं, और डूबने के लिए मुक्त हूं, नदियों की कलकल ध्वनियां मौन हुई, लगता है पहुंच गए हम सागर तट पर, जब से नाद सुना अनहत का लगता है ठहर गया स्वर, पहुंच गए हम अपने तट पर, नदियों की कलकल ध्वनियां मौन हुई, लगता है पहुंच गए हम सागर तट पर। साधना की पृष्ठभूमि विरक्ति है, आराधना में अनुरक्ति है, शब्द अपने आप में अभिव्यक्ति है, मौन में बस व्यक्ति है। जो देखता है सृष्टि को एक दृष्टा की तरह, वो स्वयं अदृष्ट है, जो देखता है सृष्टि को एक दृष्टा की तरह, वो स्वयं अदृष्ट है। व्यक्त है जिसके हृदय में षष्टि का सब, व्यक्त है जिसके हृदय में षष्टि का सब, वो स्वयं अव्यक्त है जो देखता है षष्टि को एक दृष्टा की तरह। अपने मरने का जिन्हें डर है वे डरें और रखें बचने के लिए अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हैं वे पहने आभूषण ओढ़ा करें वस्त्र, जो कुरूप हैं वे पहने आभूषण ओढ़ा करें वस्त्र, पर तुम तो सर्वांग सुंदर हो इसीलिए दिगंबर हो, पर तुम तो सर्वांग सुंदर हो इसीलिए दिगंबर हो, अस्त्र आयुध से तुम्हें क्या काम, तुम अपने में हो और हो पूर्ण काम, तुम अपने में हो और हो पूर्ण काम। छूकर जिसे पाया नहीं, रस लिया चाहा कि रसना थक गई है, मैंने पुकारा भी उसे पर नहीं आई प्रतिध्वनि, मैंने पुकारा भी उसे पर नहीं आई प्रतिध्वनि, जिसे मैं सुन सकूं नासिका भी गंध जिसकी पा न सकी, रूप देखूंगा आज उसका पर नयन भी चुक गए, बस एक ही एहसास उसका कि वही है जो रूप रस और गंध सबसे पार है, छूकर जिसे पाया नहीं रस लिया चाहा कि रसना थक गई है। देखिए हम किस तरह शिकायत करते हैं, कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई, कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई, उसे शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया, उसे शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया। ये आज हम कल रच चुके थे, ये आज हम कल रच चुके थे, ये लकीरें जो आज दिखी हैं हम कल लिख चुके थे, ये बादल जो आज बरसे हैं कल भर चुके थे, हमारे पास आज के लिए वक्त ही कहां है, हमारे पास आज के लिए वक्त ही कहां है, आज तो हम आगामी कल रच रहे हैं बड़ी बेफिक्री से, कल की फिक्र में जी रहे हैं, बड़ी बेफिक्री से कल की फिक्र में जी रहे हैं, काश हम आज में जीते न कल करते ना आज होता, ना आज करते न कल होता, ये आज हम कल रच चुके थे। एक बीज धरती में जब भी गिरता है पहले माटी में मिलकर मिटता है, एक बीज धरती में जब भी गिरता है पहले माटी में मिलकर मिटता है, ऐसे ही जीवन में झुकना धरती सा होना क्षमा और अहम गलाकर सबसे मिलना मृदुता है। उगा अंकुर सीधा होकर जैसे ऊपर उठता है, तन मन प्राणों का सीधा होना ऊंचे उठना रुजुता है, तन मन प्राणों का सीधा होना ऊंचे उठना रिझता है, फिर जो माटी शेष रही अंकुर पर उसे हटाकर नन्ही कोमल कोपल प्रकाश में आकर जैसे खिलती है, फिर जो माटी शेष रही अंकुर पर उसे हटाकर नन्ही कोपल प्रकाश में आकर जैसे खिलती है, ऐसे ही जीवन में लोभ विकार हटाकर निज प्रकाश में आना खिलना सत्य और सुचिता पाना है। अब नन्हे पौधे को जैसे बाड़ लगाकर हम बचा लिया करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को मन को हर एक बुराई से हमें बचाना संयम से रहना है, फिर जैसे पौधा गर्मी सर्दी बरसा सहकर बड़ा वृक्ष बनता है, ऐसे ही जीवन में सब कुछ सहना और जीतना मन को उत्तम तप करना है, और वृक्ष से सूखे पत्ते पतझर आने पर जैसे झरते हैं, वृक्ष प्रतीक्षा में बसंत की जैसे मौन खड़े रहते हैं, ऐसे ही जीवन में अविनश्वर को पाने जो भी नश्वर है उसे सहज चुपचाप छोड़ना त्याग धर्म पाना है, अपने सुरभित पुष्प लुटाकर जैसे वृक्ष अधिक अकेले आनंदित रहते हैं, ऐसे ही जीवन में सबके बीच स्वयं को एकाकी पाना, मैं और मेरेपन की मन में बात नहीं लाना आकिंचन होना है, घने वृक्ष की छाया जैसे सबको मिलती है उसमें जैसे अपने दूजे का भेद नहीं है, ऐसे ही जीवन में सब में पाना ब्रह्म सभी को अपनाना है, और वासना में जाती जीवन की धारा बड़े जतन से अपनी ओर बहा लाना है, यही ब्रह्म में रमना ब्रह्मचर्य पाना है, यही ब्रह्म में रमना ब्रह्मचर्य पाना है, यही धर्म का मर्म वृक्ष सा जीवन पत्थर की चोटें खाकर भी हमें सभी को मीठे फल देना है, पत्थर की चोटें खाकर भी हमें सभी को मीठे फल देना है। भगवान से कह रहा हूं, कुछ कहो और कहकर खोल दो ये बंध मेरे, कुछ कहो और कहकर खोल दो ये बंध मेरे, मैं बंधा कब तक रहूंगा मौन में, हे निर्बंध तेरे, कुछ कहो और कहकर खोल दो ये बंध मेरे। मुझे कहना है अभी वो शब्द जिसे कहकर निःशब्द हो जाऊं, मुझे कहना है अभी वो शब्द जिसे कहकर निःशब्द हो जाऊं, मुझे देना है अभी वो सब जिसे देकर निःशेष हो जाऊं, मुझे देना है अभी वो सब जिसे देकर निःशेष हो जाऊं, मुझे रहना है अभी इस तरह कि मैं रहूं लेकिन मैं रह न जाऊं, मुझे कहना है अभी वो शब्द जिसे कहकर निःशब्द हो जाऊं। पुरानी दीवार की एक की ईंट और गिर गई, पुरानी दीवार की एक ईंट और गिर गई, लगता है जैसे किसी ने पूछा हो जिंदगी और कितनी रह गई, लगता है जैसे किसी ने पूछा हो जिंदगी कितनी और रह गई। किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वो था और अभी तक जिंदा था, किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वो था और अभी तक जिंदा था। रेत पर लिखकर इबारत जिंदगी की सो गए हम और जागे कि इससे तनिक पहले एक छोटी लहर आकर जा चुकी, रेत पर लिखकर इबारत जिंदगी की सो गए हम और जागे कि इससे तनिक पहले एक छोटी लहर आकर जा चुकी। मृत्यु पर लगातार कई कविताएं हैं। सांझ के द्वारे रात आई है, स्वागत करो दीप जलाओ, देखो तो ये रोशनी का संदेश लाई है। सांझ के द्वारे रात आई है, स्वागत करो दीप जलाओ, देखो तो ये रोशनी का संदेशा लाई है। जीवन के द्वारे मौत आई है, स्वागत करो डोली सजाओ, देखो तो ये अपने घर पहुंचने का संदेशा लाई है। जीवन के द्वारे मौत आई है, स्वागत करो डोली सजाओ, देखो तो ये अपने घर पहुंचने का संदेशा लाई है। जिंदगी जाने को थी, हमने मौत को बुला लिया, जिंदगी जाने को थी, हमने मौत को बुला लिया, क्या करें हमसे अकेले रहा नहीं गया। बड़ा व्यंग है इसमें। जीवन भर मौत हमारा इम्तिहान लेती है, देखो ना एक एक सांस गिन गिन कर लेती और देती है। हमने जीवन भर क्या खोया क्या पाया इसका लेखा जोखा अंत में आकर यही तो लेती है। हम अपना घर इसे बताएं बुलाएं या ना बुलाएं, ये दबे पांव आती और हमें साथ लेकर सरेआम चली जाती है, ये दबे पांव आती और हमें लेकर सरेआम चली जाती है। हमारी हर सांस मौत के नाम रोज रोज खत लिखती है, हमारी हर सांस मानो मौत के नाम रोज रोज खत लिखती है, लेकिन मौत एक रोज आकर खुद जवाब देती है, लेकिन मौत एक दिन आकर खुद जवाब देती है। मौत ने आकर उससे पूछा मेरे आने से पहले वो क्या करता रहा, मौत ने आकर उससे पूछा कि मेरे आने से पहले वो क्या करता रहा, उसने कहा आपके स्वागत में पूरे होश और जोश से जीता रहा। उसने भी कहा कि आपके स्वागत में पूरे होश और जोश से जीता रहा। सुना है मौत ने उसे प्रणाम किया, सुना है मौत ने उसे प्रणाम किया और कहा अच्छा जियो अलविदा। ऐसे व्यक्ति को मौत भी नहीं मार सकती। जिंदगी का एक पड़ाव खत्म हुआ, उसने रास्ता बदला, मैंने पूछा पहला पड़ाव कैसा रहा। जिंदगी का एक पड़ाव खत्म हुआ, उसने रास्ता बदला, मैंने पूछा पहला पड़ाव कैसा रहा, उसने कहा अपने करीब रहा। उसने भी कहा कि अपने करीब रहा, मैं नहीं समझा, मैंने फिर पूछा, उसने कहा सबके बीच अपना होकर रहा। उसने कहा कि सबके बीच अपना होकर रहा। मुझे गुमसुम खड़ा देखकर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि ये मेरा आखिरी पड़ाव था, सफर खत्म हुआ। उसने कहा ये मेरा आखिरी पड़ाव था, सफर खत्म हुआ। ये भी एक व्यंग है। एक वे हैं जो ये सोचकर जी रहे हैं कि एक न एक दिन मरने का तय है, तो आज अभी ठाट से जियो। एक वे हैं जो ये सोचकर जी रहे हैं कि एक न एक दिन मरने का तय है, तो आज अभी ठाट से जियो। एक तुम हो जो ये सोचकर मर रहे हो कि आज अभी यदि मौत आई है तो शान से मरो, अगर आज अभी मौत आई है तो शान से मरो। अरे ये तो हम हैं जो इस सोच में न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं कि तुम क्यों शान से मर रहे हो और बे क्यों ठाट से जी रहे हैं। हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जैसे जीना नहीं चाहते जीना पड़ रहा है। हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जैसे जीना नहीं चाहते जीना पड़ रहा है, और मरते वक्त मरते हैं कुछ इस तरह कि जैसे मरना नहीं चाहते मरना पड़ रहा है। देखो तो, और मरते वक्त मरते हैं कुछ इस तरह कि जैसे मरना नहीं चाहते मरना पड़ रहा है। शायद इसलिए हमें जीवन बार बार दोहराना पड़ता है। हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जीना नहीं चाहते पर जीना पड़ रहा है। मृत्यु पर एक और कविता। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, अभी मुरझाना टूट कर गिरना और अभी खिल जाना है। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, अभी मुरझाना टूट कर गिरना और अभी खिल जाना है। कल यहाँ आया था कौन कितना रहा इससे क्या, मुझे आज अभी लौट जाना है। कल यहाँ आया था कौन कितना रहा इससे क्या, मुझे आज अभी लौट जाना है। मेरे जाने के बाद लोग आए अर्थी संभालें कांधे बंध लें, इससे पहले मुझे खुद संभलना और बदल जाना है। लोग आए अर्थी संभालें कांधे बदलें, इससे पहले मुझे खुद संभलना और बदल जाना है। मेरे जाने के बाद लोग आए मेरी जली देह की राख उठाएं उसे कहीं सिराएं, इससे पहले मुझे अपने अहंकार को जलाना अपने को अपने में सिराना डुबोना है और ऊंचे उठना है। मौत आए और जाने कब आए, मौत आए और जाने कब आए, अभी तो मुझे रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है। अभी तो मुझे रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है। जीवन रचता गीत मौत गाती है, सांसों में आवाज उसी के आने की आती है। जीवन रचता गीत मौत गाती है, सांसों में आवाज उसी के आने की आती है। जीवन बुनता राह मौत राही है, सांसों में पगचाप उसी के आने की आती है। सुख दुख तो दुनिया में सबको होते हैं, जो अपने हैं वे अपनों के सुख दुख में हंसते रोते हैं। अरे सुख दुख तो दुनिया में सबको होते हैं, जो अपने हैं वे अपनों के ही सुख दुख में हंसते रोते हैं। एक मौत है सुख दुख में सबके एक साथ आती है, एक मौत है सुख दुख में सबके एक साथ आती है। जीवन भर साथ रहे आते हैं, जीवन भर साथ रहे आते हैं, ये तो सब जीवन के साथी हैं, पर ये अपनी अपनी मौत अंत में साथ यही जाती है। जीवन भर जो साथ रहे आते हैं वो तो सब जीवन भर के साथी हैं, ये है अपनी अपनी मौत अंत में साथ यही जाती है। बन होता है बहुत घना सूरज को किरणों की राह नहीं मिलती, बन होता है बहुत घना सूरज की किरणों को राह नहीं मिलती आने को। जाने किस पगडंडी से ये चुपचाप चली आती है, जीवन जितना जाता दूर पास उतनी ही ये आती है। जीवन जाता जितना दूर पास उतनी ही ये आती है, मानो छाया है ये जीवन की सो जीवन भर पीछे पीछे आती है। जीवन रस्ता गीत मौत गाती है, सांसों में आवाज उसी के आने की आती है। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज, मौत में सुन रहा हूं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की आवाज। कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर तुम्हारा मुझे पुकारने का अंदाज कि चलो, कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर तुम्हारा मुझे पुकारने का अंदाज कि चलो। ऐसा लगता है मानो दूर कहीं बज रहा हो कोई सुरीला साज कि चलो, और तुम्हारा ये इस तरह खुद चलकर मेरे करीब आना, और तुम्हारा ये इस तरह खुद चलकर मेरे करीब आना। अपने हाथों मेरे बंद पिंजरे का द्वार खोलना मुझे मुक्त करना, कितना अच्छा लग रहा है आज अपने घर मान सरोवर पर लौटता मेरा मानस हंस, अपने घर मान सरोवर पर लौटता मेरा मानस हंस तुम्हें प्रणाम करता है आज आखिरी बार, तुम्हें प्रणाम करता है आज आखिरी बार। जो उसने जीते जी मौत पर लिखा उसे लोगों ने कई कई भाषाओं में पढ़ा और सुना, जो उसने जीते जी मौत पर लिखा उसे लोगों ने कई कई भाषाओं में पढ़ा और सुना, औरों को दिया, पर मरते वक्त हमने देखा उनमें से कोई भी मौत की भाषा नहीं सीखा, पर मरते वक्त हमने देखा उनमें से कोई भी मौत की भाषा नहीं सीखा। हर आदमी मौत से डरा और दहशत में जिंदगी का एक और अवसर सबने खो दिया। जो उसने जीते जी मौत पर लिखा उसे लोगों ने कई कई भाषाओं में पढ़ा सुना। आखिरी मृत्यु पर कविता कह रहा हूं, मुझसे सुनकर बात मरण की, मेरे भीतर तुम्हें निराशा छाई लगती होगी। मुझसे सुनकर बात मरण की, मेरे भीतर तुम्हें निराशा छाई लगती होगी, पर जीवन में स्वीकार मरण का, हंसी खुशी कर लेना जीवन का इनकार नहीं है। पर जीवन में स्वीकार मरण का, हंसी खुशी कर लेना जीवन से इनकार नहीं है। वो तो क्रम है संस्कृति का, वो तो क्रम है संस्कृति का, जैसे वृक्षों से पतझड़ आने पर सूखे पत्तों का गिरना, पतझड़ से इनकार नहीं है। स्वागत है आते वसंत का, स्वागत है आते वसंत का। मुझसे सुनकर बात मरण की, मेरे भीतर तुम्हें निराशा छाई लगती होगी।
पंछी काहे हो तू दास, तू तोड़ना मन की आस। पंछी काहे हो तू दास, देख घटाएं घिर आई वो, एक संदेशा लाई है वो। देख घटाएं घिर आई वो, एक संदेशा लाई है वो। पिंजरा लेकर हो, पिंजरा लेकर उड़ जा पंछी, पहुंचे प्रभु के पास। पंछी काहे हो तू दास, तू तोड़ना मन की आस। पंछी काहे हो तू दास, उठ उठ कर आग लगा दे, फूंक दे पिंजरा पंख जला दे। उठ उठ कर आग लगा दे, फूंक दे पिंजरा पंख जला दे। राख बगुला हो, राख बगुला बनकर पंछी, पहुंचे प्रभु के पास। पंछी काहे हो तू दास, तू तोड़ना मन की आस। पंछी काहे हो तू दास, तू तोड़ना मन की आस। पंछी आहे हो तू दास।